नमस्कार भारत, तारीख 1 जुलाई, दिन शनिवार। मैं हूं मोहन लाल शर्मा। लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार आज से भारत में लागू हो ही गया जीएसटी।
चाणक्य ने कहा था, कोई वस्तु कितनी ही दूर क्यों न हो, कठिन तपस्या और परिश्रम से उसे भी प्राप्त किया जा सकता है।
जीएसटी की आगे की प्रक्रिया और सरकार की चुनौतियां क्या है, करेंगे विश्लेषण।
जब उत्तर से दक्षिण, यहाँ से कश्मीर से लेकर कश्मीर एक नहीं हो पाए, तो कैसे हम इस जजिया कर और जो है जीएसटी से एक हो पाएंगे।
याद करेंगे पीवी नरसिम्हा राव को, जिन्होंने भारत में मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के लिए दरवाजे खोले। लेकिन पहले थोड़ा सा ठहरेंगे और सुनेंगे बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। 30 जून और 1 जुलाई की दरमियानी रात 12 बजे से पूरा भारत एक बाजार हो गया है, यानी भारत में जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स व्यवस्था लागू हो गई है। इसे लागू करने के लिए सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया है और कहा है कि ये केवल आर्थिक सुधार नहीं बल्कि सामाजिक सुधार की भी बात करता है। उनका कहना है कि हकीकत में ये गुड एंड सिंपल टैक्स है। उन्होंने लोगों से इस नए टैक्स व्यवस्था को अपनाने की भी अपील की है। न्यूयॉर्क के पुलिस कमिश्नर का कहना है कि ब्रॉन्स क्लेबनन अस्पताल में जिस बंदूकधारी ने हमला किया था, उन्होंने आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर के कपड़े पहने राइफल से लैस एक व्यक्ति ने अस्पताल में गोलीबारी की थी। हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और कम से कम 6 लोग घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार बंदूकधारी का नाम हेनरी बेलो है, जो पहले इसी अस्पताल में डॉक्टर थे और उन्होंने अपने सफ़ेद कोट के भीतर असॉल्ट राइफल छिपा रखी थी। गैरी ट्रिम्बल की मंगेतर इसी अस्पताल में काम करती हैं। उनका कहना है, मेरे हिसाब से अस्पताल को अपनी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करनी चाहिए, क्योंकि मैं अस्पताल के पिछले दरवाजे से एक कर्मचारी के साथ अंदर आ सकता हूं। अगर कोई कर्मचारी दरवाजा खोलता है तो मैं सीधे अस्पताल के भीतर बिना रोक टोक पहुंच जाता हूं। मुझे लगता है कि अस्पताल के मुख्य दरवाजे पर एक पुलिस अधिकारी को तो होना ही चाहिए। वो लोग तभी कुछ करते हैं जब कोई हादसा हो जाता है। ऐसे ही हमारे मुद्दों को सुना जाता है। गैरी ट्रिम्बल के शब्द, जिनकी मंगेतर ब्रॉन्क्स लेबनन अस्पताल में काम करती हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उत्तर कोरिया के साथ रणनीतिक धैर्य दिखाने का समय अब खत्म हो गया है। व्हाइट हाउस में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के साथ एक संयुक्त प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया के खतरे को कड़ा जवाब दिया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि रक्षा मामलों में जिम्मेदारियों का उचित बंटवारा उनके लिए ज़रूरी है। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ने कहा कि उनका देश रक्षा क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाएगा और अपनी सुरक्षा की क्षमता बढ़ाएगा।
북한은 북핵 문제를 반드시 해결하겠다는 한미 양국의 확고한 의지를
उत्तर कोरिया के परमाणु मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाया जाना चाहिए। इस मामले में उत्तर कोरिया और अमेरिका की दृढ़ प्रतिबद्धता को कमतर कर ना आके। मैं उत्तर कोरिया से अपील करूंगा कि कोरियाई प्रायद्वीप में परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए चर्चा करने के लिए वो आगे आए। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में समझौतों या रियायतों के लिए कोई जगह नहीं होती। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के शब्द। निजता से जुड़े मुद्दों पर चिंता जाहिर करते हुए अमेरिका के मिसिसिपी राज्य ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन फ्रॉड कमीशन को वोटर संबंधी जानकारी देने से इनकार कर दिया है। बुधवार को कमीशन के चेयरमैन क्रिस कोबाच ने सभी 50 राज्यों से कहा था कि वो साल 2006 से लेकर अब तक सभी पंजीकृत वोटरों की जानकारी मुहैया कराएं। मांगी गई जानकारी में वोटरों की जन्मतिथि, पार्टी की तरफ झुकाव, सोशल सिक्योरिटी नंबर, सैन्य दर्जा और आपराधिक मामलों से जुड़ी जानकारियां शामिल हैं। मिसिसिपी के गृहमंत्री डेलबर्ट हॉसमैन ने कमीशन के निवेदन को ठुकरा दिया है और कहा है कि कमीशन चाहे कुछ करें, जानकारी नहीं दी जाएगी। रूसी सुरक्षा एजेंसी FSB ने कहा है कि रूस के कब्जे वाले क्रीमिया के पास उसके 2 सीमा सुरक्षा जवान अपना रास्ता भटक गए हैं। ये जवान फिलहाल यूक्रेन के अधिकारियों की हिरासत में हैं। FSB का कहना है कि दोनों जवान एक सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल थे। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। भारत के इतिहास में ऐसे मौके गिनती के हैं जब आधी रात को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया हो। भारत की आजादी की रात यानी कि 15 अगस्त 1947, आजादी की 25वीं वर्षगांठ और इसके बाद आजादी की 50वीं वर्षगांठ यानी कि 15 अगस्त 1997, एक बार फिर 30 जून की आधी रात को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में विशेष सत्र बुलाया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मौजूदगी में सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी ने GST के लागू किए जाने की ऐतिहासिक घोषणा की।
चाणक्य ने कहा था, यद दुरम यद दुराद्यम यच्च दुरे व्यवस्थितम तत् सर्वम तपसा साध्यम तपो ही दुर्ति क्रमम। चाणक्य के इस वाक्य ने हमारी पूरी जीएसटी प्रक्रिया को बड़े अच्छे ढंग से कहा है। कोई वस्तु कितनी ही दूर क्यों न हो, उसका मिलना कितना ही कठिन क्यों न हो, वो पहुंच से कितनी ही बाहर क्यों न हो, कठिन तपस्या और परिश्रम से उसे भी प्राप्त किया जा सकता है और ये आज हुआ है।
तो इस तरह से भारत में आज से एक टैक्स व्यवस्था यानी कि GST लागू हो गई है। सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि मान रही है, लेकिन कांग्रेस ने इसका कल बहिष्कार किया। हमारे सहयोगी बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद ने देर रात संसद की कार्यवाही पर नजर रखी। सुनिए उनकी ये रिपोर्ट।
गरीबों का उद्धार, तेज विकास, GST से GST।
एक देश एक कर, भारत का ऐतिहासिक क्षण। रात्रि 12 बजे के बाद यानी अब से कुछ घंटे पहले टैक्स का एक नया सिस्टम देश भर में लागू हो गया। यानी किसी एक वस्तु की कीमत सभी राज्यों में एक ही होगी, अलग अलग नहीं। इस ऐतिहासिक अवसर पर संसद के दोनों सदनों का एक स्पेशल अधिवेशन बुलाया गया। संसद के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के 11 बजे रात में आने के बाद जश्न शुरू हो गया।
राष्ट्रपति जी,
मोदी सरकार ने एक देश एक कर कहे जाने वाले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST की शुरुआत को आज़ादी के 70 साल बाद से अब तक का सबसे बड़ा टैक्स सुधार कहा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने GST के कई फायदे गिनाए।
राज्यों में और केंद्र में मिलाकर 17 ट्रांजैक्शन टैक्स है, 23 सेस हैं, उन सबको समाप्त कर दिया गया है और उनके स्थान पर केवल एक टैक्स रहेगा। हर टैक्स के लिए अलग रिटर्न जाता था, आज एक रिटर्न जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस अवसर पर बोले और काफी देर तक बोले। उन्होंने इस अहम अवसर पर उदारता का सबूत दिया।
यह किसी एक दल की सिद्धि नहीं है, यह किसी एक सरकार की सिद्धि नहीं है, ये हम सबकी सांझी विरासत है।
लगभग 1000 अहम लोगों को न्योता भेजा गया था, जिनमें राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री, सभी सांसद, विपक्ष के नेता, दो पूर्व प्रधानमंत्री, RBI के गवर्नर और एंटरटेनमेंट उद्योग के अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर शामिल थे। कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, लेफ्ट पार्टीज और राष्ट्रवादी जनता दल ने समारोह का ये कहकर बहिष्कार किया कि GST को लागू करना कोई आज़ादी के जश्न मनाने जैसा नहीं। उनके अनुसार सरकार इसे ज़रूरत से ज़्यादा अहम बनाने की कोशिश कर रही है। आम लोगों में अनिश्चितता बनी हुई है। कोई कहता है उसे नहीं मालूम कि GST क्या बला है। कुछ लोगों का कहना था कि GST में 28% टैक्स बहुत ज़्यादा है, इसे कुछ कम करना चाहिए। कई व्यापारियों ने GST के खिलाफ आवाज़ें भी उठाई हैं, लेकिन अधिकतर लोगों का कहना था कि देखते हैं आगे क्या होता है। जुबैर अहमद, BBC, दिल्ली।
तो लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि GST लागू तो हो गया, लेकिन सवाल ये है कि अब आगे क्या और कैसे। BBC संवाददाता कुलदीप मिश्र ने आर्थिक मामलों के जानकार आलोक पुराणिक से बात की, तो सबसे पहले यही पूछा कि अब सरकार के सामने क्या चुनौतियां हैं, आगे की प्रक्रिया कितनी सरल और कितनी जटिल होगी।
एक बड़ी चुनौती है और भारत जैसे देश में वो चुनौती बहुत सघन हो जाती है। मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जर्नलिस्ट, कमेंटेटर्स, उनकी समझ में आ गया, वो समझा भी रहे हैं। इसमें काफी हद तक पेपर वर्क इन्वॉल्व है, कंप्यूटर इन्वॉल्व है, तकनीक इन्वॉल्व है, तो एक पब्लिक एजुकेशन, बिजनेस एजुकेशन का काम सरकार को करना पड़ेगा, और जो सिर्फ विज्ञापनों से नहीं होगा। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये आजाद भारत के आर्थिक इतिहास के उन चुनिंदा फैसलों में से हैं जो भविष्य में बहुत ऐतिहासिक फैसले के तौर पर चिन्हित किए जाएंगे। इसीलिए सरकार को बहुत रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा, बहुत जिम्मेदार होना पड़ेगा, कोई समस्या, कोई इशू आए उस पे जवाब देने में। जैसे मैं आपको इंडिकेट करूं, काजल पर लगाया गया था टैक्स 28%। अभी काजल पे टैक्स लगा तो फिर समझ में आया कि काजल भी दो तरह के होते हैं, तो डिब्बी वाला और एक पेंसिल से लगाने वाला काजल। अब दोनों को यूज करने वाली क्लास अलग है, तो दोनों पे टैक्स आप एक जैसा नहीं लगा सकते। तो बाद में वो रिवाइज हुआ, एक पे 28% लगाया गया, एक पे कम किया गया। तो मेरे ख्याल से नंबर एक तकनीकी मसला देखना पड़ेगा, नंबर दो सार्वजनिक एजुकेशन, पब्लिक एजुकेशन, नंबर तीन कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आए तो सरकार को फास्ट रिस्पॉन्स दिखाना पड़ेगा।
जो GST काउंसिल बनाई गई है उसकी क्या प्रक्रिया है? सुनने में आ रहा है हर 3 महीने में बैठक होगी, वो क्या समीक्षा करे?
देखिए, GST काउंसिल इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर का घनीभूत रूप है, यानी राज्य और केंद्र ये बैठकर तय करेंगे। और एक अच्छी बात यह है कि अब तक सारे फैसले सर्वानुमति से हुए, बहुमत से भी नहीं हुए। अब तक जो दिखाई पड़ रहा है कि 3 महीने की मीटिंग की तो बात की गई है, लेकिन अगर कोई ऐसा मसला आएगा तो सरकार GST काउंसिल पहले भी बैठ सकती है, और बैठना पड़ेगा क्योंकि ये कर राजस्व के मामले हैं, इसमें आप कई बार 3 महीने का इंतजार भी नहीं कर सकते।
अगर आप संक्षेप में बता सकें कि जो व्यापारी नाराज हैं वो किन किन वजहों से नाराज हैं और किस तरह के व्यापारी ज्यादा नाराज?
देखिए, दो आते हैं, एक तो अज्ञात का भय होता है। 1984 में कंप्यूटर राजीव गांधी जी ला रहे थे, तो लगभग हर विपक्षी पार्टी उस वक्त उसके विरोध में थी, हर ट्रेड यूनियन उसके विरोध में थी। आरोप ये था कि ये हमारे जॉब को तबाह कर देगा। अगले 10 वर्षों में हमने देखा कि इंडिया में जॉब का बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर वहां से आया, तो अज्ञात का भय, हम जानते कुछ नहीं। दूसरा भय इस बात से आ रहा है, वो कर का भय नहीं है, आप कर उनसे 28% ले लें, लेकिन वो उस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल में, उस सिस्टम में, उस रिकॉर्ड में नहीं आना चाहते। इसका मतलब यह है कि वो चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीजें चलती रहें जो रिकॉर्ड में ना आए। GST डिजाइन जैसे किया गया है, इसमें GST का फायदा आप ले ही तब सकते हैं जब आप रिकॉर्ड में जाएं। तो आप देखें कि जो तबका विरोध कर रहा है, वो तबका विरोध इस आधार पर नहीं कर रहा कि 18% हो या 26% हो। उनका ये कहना है कि भाई ये हम छोटे कारोबारी हैं, हमको इससे अलग रखा जाए, ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं।
GST की राह कितनी सरल कितनी कठिन, विश्लेषण कर रहे थे आर्थिक मामलों के जानकार आलोक पुराणिक। आम जनता GST लागू होने को लेकर क्या सोचती है, राय जानने के लिए निकल पड़े हमारे सहयोगी जुबैर अहमद।
GST का मतलब समझाइए कि क्या आपके ग्राहक आएंगे, वो GST से क्या मतलब निकलता है?
भैया, हम तो इतना बोल सकते हैं कि पहले जब वेट आया था उस टाइम बहुत हाहाकार हुई थी कि वेट आ रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, मगर ओवरऑल हमने देखा कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल मार्केट वैसे ही चलती रही। और मुझे ऐसा लगता है कि GST आने के बाद भी कुछ चीजों में रेट कम होंगे, कुछ बढ़ेंगे, ओवरऑल कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा।
जो ज्यादातर उन लोगों को फर्क पड़ेगा जो 3 नंबर पे माल लेते थे, होलसेल में कट रेट में लेते थे, उन लोगों के लिए ज्यादा फर्क पड़ेगा। जो टैक्स देते हैं, 3 नंबर देते, वेट भरते हैं, उनको इतना नहीं पड़ेगा। हाँ, पब्लिक को थोड़ा फर्क पड़ सकता है इस पे, कहाँ 12% टैक्स, कहाँ 28% टैक्स, बहुत ज्यादा हो जाता है।
GST का मतलब है कि उस समय जब देश की आजादी थी, जजिया कर नहीं था। इस समय किसानों के ऊपर जो बोझ पड़ेगा, गुड़ हम बनाते हैं, चीनी लाते हैं, गन्ना लाते हैं, ये सब परचेज करके हाई फैक्ट्री वाले बनाएंगे, और वहाँ किसानों पर इतना बोझ बनेगा। हम तो कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर जो है दुकानदार आएंगे तो अपना रेट बढ़ा करके हमको कहेगा भाई आज का रेट ये हो गया है, हम तो झेलेंगे, तनख्वाह उतनी मिलती है। हम किसान लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, तो ये जो है दुकानदार दोषी नहीं है, कंज्यूमर दोषी नहीं है, सरकार दोषी हो रही
कैसे
है।
कैसे दोषी? सरकार तो चाह रही है कि एक मार्केट हो जाए, हर जगह टैक्स एक ही तरह का हो।
देखिए, जब सद्भावना एक नहीं हो पाई, जब हम लोग एक नहीं हो पाए, जब उत्तर से दक्षिण, यहाँ से कश्मीर से लेकर कश्मीर एक नहीं हो पाए, तो कैसे हम इस जजिया कर और जो है GST से एक हो पाएंगे?
आम जनता की आवाज। और आप क्या सोचते हैं?
BBC इंडिया बोल।
1 जुलाई से लागू हो रहा है GST, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे लेकर लोगों के मन में अब भी हैं तरह तरह के सवाल। कौन सी चीजें महंगी होंगी, क्या होगा सस्ता? अगर आपके मन में भी इसी तरह के हैं प्रश्न, तो इस शनिवार हमसे जुड़िए शाम 7:30 बजे BBC इंडिया बोल में। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमें मुफ्त फोन करें 1811 7000 और 1811 7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत और मेरे सामने जनसत्ता है और बाकी अखबार मानसी आपके पास मौजूद हैं। जनसत्ता की जो पहली शीर्ष खबर है कि बदलाव के बयार की पहली तारीख 1 जुलाई 2017, आधार कार्ड आज से जरूरी हो गया और बाकी खबर जो है मनमाने कर से देश आज़ाद।
जी यही खबर आज अमूमन हर अखबार के पहले पन्ने पर या कहूँ तो दूसरे पन्ने पर भी है कि आधी रात से भारत में नई टैक्स व्यवस्था लागू हो गई है। हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन है एट मिडनाइट मोदी रिंग्स इन इंडियन गुड एंड सिंपल टैक्स। इंडियन एक्सप्रेस कहता है इंडिया अवेक्स टू वन मार्केट। दी स्टेट्समैन ने कहा है हिस्ट्री मेड जीएसटी हियर। दैनिक जागरण कहता है कर से करामात, 70 साल के बाद 14 टैक्स खत्म, अब एक कर। अब और खबरें बता दूं हिंदुस्तान
टाइम्स जीएसटी के अलावा क्या है।
जी वही खबरें मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक खबर के अनुसार झारखंड के रामगढ़ में अलीमुद्दीन की हत्या के लिए उनकी पत्नी मरियम खातून ने बजरंग दल से जुड़े लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। गुरुवार को गोमांस ले जाने के शक में भीड़ ने पीट पीट कर अलीमुद्दीन की हत्या कर दी थी। अखबार के अनुसार मरियम का कहना है कि उनके पति मांस का व्यापार नहीं करते थे बल्कि कोयले के व्यवसाय में थे। दैनिक जागरण में छपी एक खबर के अनुसार भारतीय क्षेत्र पर दावा करते हुए चीन ने पशुओं का सहारा लिया है और सिक्किम के डोंगलोंग इलाके पर दावा करते हुए चीन ने कहा है कि परंपरागत रूप से उनके नागरिक यहां पर पशु चराते आए हैं और इसे चीन का इलाका साबित करने के लिए इतना काफ़ी है। एक और खबर जागरण से, इसके अनुसार सरकार ने लघु बचत योजनाओं यानी PPF, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज दर को 0.1% कम कर दिया है। ये कटौती जुलाई सितंबर की तिमाही के लिए होगी। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के अनुसार जम्मू कश्मीर के हवाई क्षेत्र में शुक्रवार को इंडिगो और सीमा सुरक्षा बल का एक विमान हवा में आपस में टकराने से बाल बाल बचे। BSF का विमान केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि को श्रीनगर से दिल्ली ले जा रहा था। दैनिक भास्कर में छपी एक खबर के अनुसार पाकिस्तान ने हाफिज सईद के संगठन तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर पर बैन लगा दिया है। ये कदम मोदी और ट्रंप की मुलाकात के बाद उठाया गया है। अखबार कहता है कि माना जा रहा है कि पाकिस्तान सरकार का ये फैसला ट्रंप के आतंकवाद विरोधी नीति से प्रभावित होकर लिया गया है।
चलते चलते मैं कार्टून पढ़ना चाहूँगा, GST का ही है। इरफान का कार्टून है और ये जनसत्ता कार्टून है जिसमें कह रहे हैं कि नेताजी आप GST का फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा, मीडिया वाले कभी कभी पूछ लेते हैं।
व्हाट्सएप पर भी आज GST के फुल फॉर्म काफी चल रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया मानसी। और कार्यक्रम में अब वक्त है विवेचना का। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत में मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है, लेकिन उनके राजनीतिक करियर में कई महत्वपूर्ण पड़ाव आए हैं। 28 जून को उनकी 96वीं जयंती थी। सुनिए विवेचना रेहान फजल से।
जॉन एफ कैनेडी और फील्ड मार्शल मोंटगोमरी की जीवनी लिखने वाले नाइजल हैमिल्टन कहते हैं कि बायोग्राफी इज सिंपली द ऑर्फन ऑफ एकेडेमिया। अगर कोई नेता वो सब करता है जो ऐतिहासिक ताकतें उसके लिए अपरिहार्य कर देती हैं, तो फिर वो व्यक्ति उतना माने नहीं रखता जितना कि समय का वो क्षण। अगर आप इस संदर्भ में नरसिम्हा राव को देखें तो उनकी राजनीतिक पारी का एक तरह से अंत हो चुका था। रॉजर्स रिमूवल कंपनी का ट्रक उनकी किताबों के 45 कार्टन लेकर हैदराबाद रवाना हो चुका था। यह अलग बात है कि उनके एक नौकरशाह मित्र ने, जो शौकिया ज्योतिषी भी थे, उनसे कहा था कि इन किताबों को यहीं रहने दीजिए, मेरे हिसाब से तो आप वापस आ रहे हैं। विनय सीतापति अपनी किताब हाफ लॉयन में लिखते हैं कि नरसिम्हा राव इस हद तक रिटायरमेंट मोड में चले गए थे कि उन्होंने दिल्ली के मशहूर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की सदस्यता के लिए आवेदन कर दिया था, ताकि अगर भविष्य में वो कभी कुछ दिनों के लिए दिल्ली आए तो उन्हें रहने की दिक्कत ना हो। तभी अचानक जैसे सब कुछ पलट गया। 21 मई 1991 को श्री पेरम्बदूर में राजीव गांधी की हत्या हो गई। इस घटना के कुछ घंटों के भीतर यानी तड़के 22 मई 1991 को BBC ने नरसिम्हा राव से संपर्क किया जब वो नागपुर से दिल्ली जाने वाला विमान पकड़ने की कोशिश कर रहे थे।
नरसिम्हा राव जी, मैंने दिल्ली फोन किया, कुछ प्रेक्षकों से बात की, कुछ हलकों से ऐसा सुनने में आया कि कुछ लोग आपके नाम पर विचार कर रहे हैं कि आपको पार्टी का नेता नियुक्त किया जाए।
मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेरे विचार में तय करेगी। पार्टी की अपनी मशीनरी है। अब मैं थोड़ी देर में जा रहा हूँ, मैं अभी नागपुर से बोल रहा हूँ।
राजीव गांधी की हत्या के बाद जब विदेश से आए मेहमान शोक व्यक्त करने के बाद वापस चले गए, तो सोनिया गांधी ने इंदिरा गांधी के पूर्व प्रधान सचिव रहे परमेश्वर नारायण हक्सर को 10 जनपद बुलवाया। उन्होंने हक्सर से पूछा कि आपकी राय में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए कौन व्यक्ति सबसे अधिक उपयुक्त है। हक्सर की सलाह थी तत्कालीन उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा। नटवर सिंह और अरुणा आसफ अली को जिम्मेदारी दी गई कि वो शंकर दयाल शर्मा का मन टटोले। नटवर सिंह ने बीबीसी को बताया,
अरुणा जी में चले गए था, हमने वो उनका पैगाम दिया कि सोनिया जी चाहती है कि आप प्रेसिडेंट बन जाइए कांग्रेस के, फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाइए। बहरहाल उन्होंने कहा कि भाई बहुत बड़ी बात की है सोनिया जी, मेरा धन्यवाद दीजिए, मगर प्राइम मिनिस्टर के लिए 18-20 घंटे काम करना पड़ता है, अब मेरी उम्र स्वास्थ्य साथ नहीं देगा, तो मैं माफी चाहता हूँ। तो हम दंग रह गए साहब। तो फिर गए साहब, फिर बुलाए हक्कर साहब को। हक्कर साहब ने कहा कि नरसिम्हा राव को बुला लो, इतने नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने थे।
नरसिम्हा राव भारतीय राजनीति के उबड़ खाबड़ धरातल से ठोकरे खाते हुए सर्वोच्च पद पर पहुंचे थे। इस पद को पाने के लिए उन्होंने किसी राजनीतिक पैराशूट का सहारा नहीं लिया था। राव का कांग्रेस और भारत के लिए सबसे बड़ा योगदान था डॉक्टर मनमोहन सिंह की खोज। विनय सीतापति बताते हैं,
जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन गए June 21, 1991, बहुत से चीज़ों में वो एक्सपर्ट थे। एजुकेशन हेल्थ में वो एक्सपर्ट थे, वो आंध्रा में एजुकेशन और हेल्थ मिनिस्टर बन चुके थे और यूनियन मिनिस्टर भी बन चुके थे दिल्ली में। फॉरेन अफेयर्स में वो एक्सपर्ट थे, सो इंटरनल सिक्योरिटी में वो एक्सपर्ट थे, इकोनॉमिक्स में वो एक्सपर्ट नहीं थे। उनको एक चेहरा चाहिए, एक मुखौटा चाहिए था जो फाइनेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन IMF और डोमेस्टिक ओपोनेंट्स को एसुएज कर सके, उनको वो ज़रूरत थी। June 19, 1991 नरसिम्हा राव पास में विलिंगडन क्रेसेंट में थे, PC अलेक्जेंडर उनके सबसे बड़े एडवाइज़र हैं, और नरसिम्हा राव PC अलेक्जेंडर से पूछते हैं, आई वॉन्ट एन इंटरनेशनली क्रेडिबल फेस एज फाइनेंस मिनिस्टर, दैट इज़ द कोट। अलेक्जेंडर ने उनको कहा कि आप IG पटेल से पूछिए, IG पटेल ने नहीं कहा। फिर PC अलेक्जेंडर ने मनमोहन सिंह का नाम बोला। तो उस रात June 20th evening, वन डे बिफोर दी स्वेरिंग इन सेरेमनी, PC अलेक्जेंडर ने रात को मनमोहन सिंह को फ़ोन किया। तब मनमोहन सिंह जी सो रहे थे क्योंकि वो फॉरेन से आए थे, और फिर उनको उठाया गया और उनको कहा कि आप फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे।
लेकिन नरसिम्हा राव की सबसे बड़ी किरकिरी हुई जब केंद्र सरकार की सारी कोशिशों के बावजूद बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। कांग्रेस के अंदर और बाहर भी कई लोगों ने इसके लिए नरसिम्हा राव को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन विनय सीतापति इस मामले में नरसिम्हा राव को क्लीन चिट देते हैं।
नवंबर 1992 में दो डेमोलिशन प्लान हुए थे, एक था बाबरी मस्जिद का, BJP और संघ परिवार प्लान कर रहे थे, और दूसरा था नरसिम्हा राव का और अर्जुन सिंह और उनके जो राइवल्स हैं कांग्रेस पार्टी में, वो प्लान कर रहे थे। पूरे नवंबर में नरसिम्हा राव ने बहुत कोशिश की कि सबको डिसीशन मेकिंग में इंक्लूड करें। नवंबर 1992 में 5 या 6 CCPA कैबिनेट मीटिंग्स थे, उस मीटिंग्स में एक भी कांग्रेस कैबिनेट मिनिस्टर ने नहीं कहा कि कल्याण सिंह को अभी निकालना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर कि ओनली वेन लॉ एंड ऑर्डर हैज़ ब्रोकन डाउन कैन यू डिसमिस अ गवर्नमेंट, नॉट वेन लॉ एंड ऑर्डर इज अबाउट टू ब्रेक डाउन। तो नरसिम्हा राव चाहते थे कि कोई और कहे कि प्लीज़ आप प्रेजिडेंट्स रूल इम्पोज करें, तो वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, तो दे चोज टू ट्रस्ट कल्याण सिंह।
ये जो थ्योरी है कि उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और वो पूजा में लग गए और उन्होंने कोई फोन कॉल्स नहीं किए,
एक सीनियर जर्नलिस्ट ने अपने बुक में लिखा कि नरसिम्हा राव पूजा कर रहे थे, तो ये दिस वॉज दी ओरिजिन ऑफ दैट रूमर। तो फिर आप देखिए कि उनको कैसे पता था कि नरसिम्हा राव पूजा कर रहे थे, क्या वो वहां पे थे? नहीं, उन्होंने पुस्तक में लिखा कि हम वहां पे नहीं थे, बट एक सोशलिस्ट पॉलिटिशियन मधु लिमये ने मुझे कहा था कि नरसिम्हा राव पूजा कर रहे थे हियर से। फिर आप पूछिए कि मधु लिमये को कैसे पता है कि वो पूजा कर रहे थे, वो तो वहां पे नहीं थे। तो मधु लिमये ने खुद कहा कि मेरा एक सोर्स है PMO के अंदर जिन्होंने मुझे कहा कि नरसिम्हा राव पूजा कर रहे थे। तो आप देखिए, ये एक रूमर है, आप मुझे पूछ रहे हैं ये रूमर, और जस्ट आप जाके देखिए कि ये रूमर के पीछे एविडेंस कहाँ है।
मैंने मशहूर पत्रकार सईद नकवी से पूछा कि क्या नरसिम्हा राव को इस मामले में ज्यादा से ज्यादा एरर ऑफ जजमेंट का दोषी माना जाए।
वो और चौहान दोनों, यानी दोनों खामोश बैठे रहे पूरे दिन, उनके होम मिनिस्टर थे, मस्जिद दिन भर गिर रही है, और रात को उनके अफसरान हमको दिखाई देते हैं यहाँ पार्टी में, तो सब तिलक लगाए हुए, यानी गोया जैसे सेलिब्रेशन करके आ रहे। वो एक मुबहम मामला है, मैं एलिज नहीं करूँगा कुछ, लेकिन असर जो मुसलमानों पे हुआ उसके बाद ये कि 140 सीटें आ गई, कभी इतने कम कांग्रेस के नंबर नहीं हुए थे, डिफेक्ट करके चला गया, उसके बाद पार्टी खत्म हो गई, फिर वो रिवाइवल हो ही नहीं पाया।
सोनिया की पसंद पर प्रधानमंत्री बने नरसिम्हा राव और सोनिया के बीच 1993 आते आते काफी दूरी बढ़ चुकी थी।
91 से 93 तक महीने में दो बार वो टेन जनपद जाते थे और हफ्ते में दो बार वो फोन पे सोनिया गांधी जी के साथ बात करती थी, और कभी कभार जब नरसिम्हा राव टेन जनपद फोन करते थे तो सोनिया गांधी सेक्रेटरी वुड कीप हिम वेटिंग फॉर 4-5 मिनट्स व्हाइल सोनिया गांधी केम ऑन द फोन, तभी उन्होंने कहा कि आई डोंट माइंड बट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया माइंड। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सोनिया गांधी ने डेलिब्रेटली ये किया, पर जब ऐसे हुआ तो नरसिम्हा राव को चोट तो लगी।
सीतापति इस किताब में रहस्य उद्घाटन करते हैं कि 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिनों की सरकार बनी थी तो उन्होंने नरसिम्हा राव का समर्थन लेने की कोशिश की थी। इसकी पुष्टि करते हुए नरसिम्हा राव के ज्योतिषी और राजनीतिक सलाहकार रहे पंडित एनके शर्मा कहते हैं,
प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरफ से ये प्रस्ताव था कि नरसिम्हा राव के ऊपर जो 3 केसेस चल रहे हैं, सेंट किट्स, जेएमएम, लखू भाई पाठक, तीनों केस निरस्त हो जाएंगे, 1997 में वो भारत के राष्ट्रपति बना दिए जाएंगे, केवल और केवल हमें इस प्रस्ताव के ऊपर मदद की बात है। जब ये बात मैंने नरसिम्हा राव से कही, नरसिम्हा राव ने कहा जिस पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, 5 साल तक प्रधानमंत्री रहा, आज कांग्रेस अध्यक्ष हूँ, पार्टी के हितों के साथ समझौता करके मैं अपने फायदे के लिए काम कैसे करूं? उन्होंने ठोकर मारी उस ऑफर को।
हालांकि वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत ने परमाणु परीक्षण किया, लेकिन विनय सीतापति कहते हैं कि भारतीय परमाणु परीक्षण के असली पितामह नरसिम्हा राव थे।
2004 में जब नरसिम्हा राव का देहांत हुआ, एन इमोशनल अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि इट इज नॉट आई, नरसिम्हा राव इज द ट्रू फादर ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम। नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने तो न्यूक्लियर प्रोग्राम वॉज इन इट्स इन्फेंसी, तो उन्होंने पैसे भी दिए, टेक्निकल एक्सपर्टाइज दी, और फिर मैंने ये भी दिखाया कि उन्होंने अमरीकी प्रेशर को कैसे निकाल दिया। जब वो 1996 में उन्होंने रिजाइन कर दिया तो वो अब्दुल कलाम और चिदम्बरम के साथ वो वाजपेयी के साथ गए और उन्होंने कहा कि बॉम्ब इज रेडी, सामग्री तैयार है, जब आप चाहे अब कीजिए।
नरसिम्हा राव के जीवन की सांधभेला में स्वयं उनकी पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया। वो बहुत एकाकी और अपमानित होकर इस दुनिया से विदा हुए। न सिर्फ उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया गया, बल्कि उनके पार्थिव शरीर को भी कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड के अंदर नहीं आने दिया गया। शायद कुछ समय बाद ही इतिहास उनका सही मूल्यांकन कर पाए।
पामुलपति वेंकट नरसिम्हा राव, उन्हें याद कर रहे थे रेहान फजल। खेल की खबरों की बात करते हैं। भारत ने तीसरे एक दिवसीय मैच में वेस्टइंडीज को 93 रनों से हरा दिया है। टीम में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने वेस्टइंडीज को 252 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज की पूरी टीम 38 ओवर एक गेंद में 158 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, और इस जीत के साथ ही 5 मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 से बढ़त ले ली है। लेकिन धमाकेदार खेल दिखाया धोनी ने, जिन्होंने बहुत शानदार बल्लेबाजी की और उनकी पारी देखने लायक थी। कार्यक्रम में इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। 30 जून और 1 जुलाई की दरमियानी रात 12 बजे से पूरा भारत एक बाजार हो गया है, यानी भारत में जीएसटी व्यवस्था लागू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे गुड एंड सिंपल टैक्स कहा है। न्यूयॉर्क के पुलिस कमिश्नर का कहना है कि ब्रॉन्क्स लेबनन अस्पताल में जिस बंदूकधारी ने हमला किया था, उन्होंने आत्महत्या कर ली है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उत्तर कोरिया के साथ रणनीतिक धैर्य दिखाने का समय अब खत्म हो गया है। निजता से जुड़े मुद्दों पर चिंता जाहिर करते हुए अमेरिका के मिसिसिपी राज्य के राष्ट्रपति ट्रंप की इलेक्शन फ्रॉड कमीशन को वोटर संबंधी जानकारी देने से मिसिसिपी ने इनकार कर दिया है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के संक में इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे शाकिर आलम। शाम को दिन भर कार्यक्रम में मुलाकात होगी। मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।